गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
ग्रीब 100 करोड़ बानी कही पहले चोले चाव दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पाव। ग्रीब कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाद बाल्मीक के चरण को सभी चर्चे साध। ग्रीब गुरुड़ बोध बेदी रची राम कृष्ण हैरान लंका पर धावा हुआ जद का कहूं बयान। ग्रीब उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड जोग जीत समझाई या जब उत ग्रीब उत्पत्ति पर लो जा पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड जोग जीत समझाई या जब उदरे काग भूषण। ग्रीब वशिष्ठ विश्वामित्र से आवे जाही अनेक काग भूषण की पलक में जो चावे सो देख। ग्रीब ऐसे काग भूषण हैं जोग जीत के दास चर्चा ज्ञान सुनाए कर दीना पद्म बास। ग्रीब दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद दत्त में मिल गए जागर विदान बाद। ग्रीब बहुत समस्तर वेद को समझाए मंसूर सिमली पर साका हुआ पहुंचे तख्त हजूर। ग्रीब सिख बंदी सतगुर सही चकवे ज्ञान अमान शीश कटा मंसूर का फेर दिया जददान। ग्रीब दीन दयाल मिले सुल्तान को बलक बखारे बादशाही 18 लाख तूरा तजा ऐसे अलख अलाही। ग्रीब सुल्तानी मक्के गए मक्का नहीं मुकाम गया रांड के लेने को कहे अदम सुल्तान। ग्रीब राबिया पर सी रब सो मक्के की असवार 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। फिर राबिया बंसुरी बनी ही मक्के चढ़ाया शीश पूर्व ले संस्कार कुछ धन सतगुरु जगदीश। ग्रीब बंसरी से वैश्या बनी सब सुनाया राग बहुर कमाली पुतरी ही जुग जुग त्याग बैराग। ग्रीब मीरा बाई पद मिली सतगुरु पीर कबीर देखता लौलीन हुई पाया नहीं शरीर। ग्रीब पीपा धना रैदास थे सदन कसाई कौन अवगत पूर्ण ब्रह्म को कहां करी अनहोन। ग्रीब रंका बरंका तिर गए नामा छिपाने ऊंचे कुल को कोसना जहां भक्ति नहीं परवे। ग्रीब बाल्मीक बैकुंठ पर सुर्ग लगाई लात शंख पचायन घूरत है गनगंधर्व सब मात। ग्रीब स्वर्ग लोक के देवता किनेन पूरा नाद सुपत सिंहासन बैठते हैं बाजा अगम अगाद। ग्रीब पंडित द्वादश कोट थे सहदेव से सुरबीन 87 देव में कोई नहीं पद्मलीन। ग्रीवाज्या शंख स्वर्ग सोन्या चौदह भवन उचार तेतीसों ततना लहा किन्हे न पाया पार। ग्रीव चार वर्ण सठ शास्त्र बिड्रे दोनों दीन मुक्ति खेत को छाड़ कर मगर भहे लोलीन। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की महिमा बहुत से सदग्रंथों में भी वर्णित है। जैसा कि कल आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30, 31 तक और फिर उसमें नाना प्रकार की व्यवस्था बताई कि ऐसे कोई साधना ऐसे करता है, कोई इंद्रियों को कंट्रोल करके संयम साध कर ही अपने मोक्ष मानता है, कोई जीव हिंसा का कठिन व्रत लेता है, अहिंसा का मुंह पर पट्टी बांध कर पैरों से भी नंगे चलते हैं ऐसे उसको ही मोक्ष मानते हैं, कोई तप करके खड़ा होकर के, कोई बैठ कर, कोई किसी प्रकार, कोई केवल अल्पाहार करके, अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के द्वारा जो अपने मुखारविंद से जो ज्ञान अपने मुख्य ज्ञान में सच्चिदानंद घन की मुख्य वाणी में मुख यानी वाणी में अर्थात उसके मुख से उच्चारण जो तत्व ज्ञान है उसमें सब प्रकार का निर्णय दिया हुआ है। उसके अंदर सब विस्तार से बताया गया है कि वो जो साधना करते हैं वो ठीक है या नहीं है और वास्तविक साधना क्या है। उस ज्ञान को तू गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उस ज्ञान उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमेश्वर द्वारा उच्चारित है, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में है, किसी तत्वदर्शी संत के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनसे मोक्ष मार्ग पूछ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जैसा भी कहे वैसा तू कर। इससे सिद्ध हुआ कि ये ज्ञान जो है जिसके विषय में तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है वो ज्ञान गीता ज्ञान से भिन्न है, वो गीता जी में नहीं है। इति सिद्धम। वो ज्ञान अब आपको कबीर परमेश्वर द्वारा गरीबदास साहेब जी का ज्ञान योग खोल देने के पश्चात ये समझो कि कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी और गरीबदास जी के अंतःकरण रूपी कंप्यूटर में शिफ्ट कर दी, फीड कर दी और फिर वो गरीबदास जी के अंदर से वो वाणी फिर कबीर जी की आज्ञा से ये सब तत्व ज्ञान प्रचार हुआ। ऐसा ही 600 साल पहले जो कबीर सागर की रचना हुई, कबीर परमेश्वर ने जो अपनी अमृत वाणी उसमें लिखी, उसमें स्पष्ट किया है कि संवत 1774 में, उसमें 75 गलती से लिखा है, संवत 1774 में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, वो बारहवां पंथ होगा गरीबदास का, यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरे द्वारा बताया गया या यथार्थ ज्ञान की महिमा उनके द्वारा प्रकट होगी। लेकिन उन 12 पंथों में जिसमें गरीबदास पंथ भी इंक्लूड है और सब कबीर पंथ जितने 11 और कबीर पंथ हैं वो भी, उनमें यथार्थ ज्ञान ना होने से, यथार्थ वे ऑफ वर्शिप ना होने से, पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल ना होने से वो 12 के 12 पंथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उनके अनुयायी असंख्य जन्म भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर परमात्मा ने कहा है कि मैं उस बार में पंथ में मैं ही चलकर आऊंगा, उस बार में पंथ में मैं ही चलकर आऊंगा और सब पंथों को समाप्त करके एक ही पंथ चलाएंगे। एक बार फिर पढ़िए उस कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर को, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी के मानने वालों की संख्या संसार में बहुत अत्यधिक है और वो अपने आप को कबीर पंथी भी कहते हैं और गर्व भी मानते हैं कि हम कबीर पंथी, लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है, क्योंकि पंथ का अर्थ होता है जो मार्ग परमात्मा ने दर्शन किया है उसी मार्ग पर हम जा रहे हैं, तो हम उसके अनुयायी उसके पंथी हैं, और हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं तो हम उस पंथ के पंथी नहीं है, हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं जिस दिशा की तरफ हमारे कबीर परमेश्वर ने संकेत किया हुआ। ये देखिएगा कबीर सागर, खेम राज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है, संपूर्ण 11 भाग, और इसके कौन हैं? मुद्रक है, ये इसका प्रथम खंड है, ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। इसमें अलग अलग भाग हैं, यहां कबीर चरित्र बोध प्रश्न नंबर 1870 बोध सागर, यहां इसमें लिखा है 12 पंथों के विषय में जानकारी दी है। ये देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, प्रथम इन्होंने लिखा नारायण दास जी का पंथ, ये इन्होंने मिक्सिंग की है, वास्तविकता यहां पर यह है कि ये चूड़ामणि जी हैं जो श्री धर्मदास साहब जी के पुत्र सेकंड पुत्र थे, अब ये साथ साथ आपको दिखाएंगे तभी ये बात आपके समझ में आएगी। ये आपने 1870 कबीर चरित्र बोध, देखिएगा कबीर चरित्र बोध ये पृष्ठ है 1871 और 1870 से प्रारंभ है। इसमें क्या लिखा है, इसमें प्रथम लिखा है नारायण दास जी का पंथ, जबकि ये है चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए, ये गलत लिखा इन्होंने, वैसे बाकी शेष ठीक लिखा, क्योंकि इन्होंने जो कबीर पंथी हैं ये परमात्मा को नहीं समझ सके ना इस वाणी को समझ सके, इन्होंने कुछ मिलावट की है कबीर सागर में, लेकिन वो प्रत्यक्ष स्पष्ट है, वो छुपा नहीं सके। कहते चोर चुराई तुमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे ऐसे सच्चाई छानी ना। पहली 12 पंथ आपको पढ़ाते हैं कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। नंबर एक नारायण जी का पंथ, यागो दास जी का पंथ यागो, तीसरा है सूरत गोपाल पंथ, चौथा है मूल निरंजन पंथ का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, ये सतनामी भी कबीर पंथी है, फिर है कमाली पंथ, कमालीय यानी कमाल जी का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, ग्यारहवा है जीवा पंथ, बारहवा है गरीबदास पंथ। ये है 1870 कबीर चरित्र बोध के 1870 पृष्ठ पर, कबीर चरित्र बोध ये। अब इसी का वर्णन, यथार्थ वर्णन यहां देखिए, जो कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, ये इन्होंने वैसे लिखा है। ये देखो, ये कबीर वाणी अध्याय है, कबीर वाणी पृष्ठ 136, ये पृष्ठ 136, और यहां क्या लिखा है, द्वादश पंथ चलो चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, बारह पंथों में काल का ही फुरमाना यानी भक्ति विधि है, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चुड़ामणी शाखा। अब देखो, ये प्रथम यहां से शुरू करेंगे, प्रथम जो ये प्रथम वंश है ना, ये चुड़ामणी जो है, ये प्रथम पंथ है चुड़ामणी जी का, इन्होंने इसको छुपा दिया, थोड़ा सा फर्क कीजिए क्या किया है। अब यहां लिखा है, प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, यानी प्रथम पंथ लिख दिया जागू का, जबकि यहां खुद लिख रहे हैं, ये देखो, प्रथम नारायण जी का पंथ, दूसरा है जागू पंथ, यानी यागू पंथ, यागू दास कहो, जागू दास कहो। आगे देखो, प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, फिर है दूसरी सुरत गोपाल ही हुई। अब दूसरा सुरत गोपाल दूसरा लिखा, इसमें सुरत गोपाल को तीसरा लिखा, ये देखिए, ये तीसरा जागूदास, प्रथम और दूसरा और तीसरा सुरत गोपाल। अब देखिएगा, अभी इन्होंने लिखा है अब तीसरा, इन्होंने दूसरा सुरत गोपाल लिखा है, यहां पर सुरत गोपाल को तीसरा लिखा है, क्योंकि यहां नारायण दास, यहां होना चाहिए था चूड़ामणि, चूड़ामणि जी धर्मदास जी के दूसरे पुत्र थे, जो परमात्मा कबीर जी की कृपा से उनका जन्म हुआ था, और नारायण दास तो पूर्ण रूप से विरोधी था कबीर जी का और अपने पिता धर्मदास जी का, तो यहां उन्होंने गलती की है, यहां लिखा नारायण दास, जो कि यहां स्पष्ट है, जो कबीर जी की वाणी में, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। तो यहां से प्रथम होना चाहिए, चुड़ामणि जी का प्रथम पंथ होना चाहिए, इन्होंने प्रथम जागू लिख दिया, जबकि यहां प्रथम नारायण दास जी, दूसरा जागू लिखा है यागो दास, और तीसरा है सुरत गोपाल, इन्होंने दूसरा सुरत गोपाल ही होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन वाणी, चौथा टकसार, ये सारे यही हैं, जैसे मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, पांचवा भगवान दास पंथ, सत्यनामी पंथ, ये सारे वही हैं। अच्छा, पांचवा पंथ बीज को लेखा, लोक परलोक कहें हम देखा, और छठा जो है पंथ सतनामी प्रकाशा, ये पांचवा छठा सतनामी, यहां पर सातवां सतनामी है। तो यहां ये गलती करते आ रहे हैं, यहां इन्होंने सिर्फ प्रथम की जगह इतनी मिलावट की है, यहां द्वितीय होना चाहिए था, या तृतीय होना चाहिए था, या चतुर्थ होना चाहिए था, ये पांचवा होना चाहिए था, या चौथा होना चाहिए था, या पांचवा, या छठा, ये सातवां, और सातवा आठवां होना चाहिए था, और ये नौवां कबीर राम कबीर पंथ है। आगे देखो, दसवां परम धाम की वाणी, इसमें ग्यारहवां परम धाम की वाणी है, ग्यारहवा, अच्छा यहां इन्होंने ग्यारहवें का अर्थ ही नहीं दिया, दसवें के आगे ग्यारहवां लिखा ही नहीं, जबकि यहां ग्यारह पूरे हो जाते, यहां से बारहवें की बात शुरू होती है, यहां से ये दसवें के बाद ग्यारहवां कहीं नहीं है, फिर यहां सत्रह संवत 1700 75 हुई, ये गलती से लिखा है, यहां 75 नहीं 74 होना चाहिए। संवत 1775, क्योंकि सन 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ, ये उसी की तरफ संकेत है। तादिन प्रेम प्रगट जग सोई, आगे देखो, आज्ञा रह ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी। बर मां पंथ का चल रहा है विवरण कि 1775 में हमारी संवत 1774 में, वैसे 75 लिखा है, जो है मेरा प्रेम प्रगट होगा और मेरे मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी। आगे देखना, ध्यान से देखना इसको, बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, मेरे ही महिमा का ज्ञान जो कोशिश करेंगे समझने की। अस्थिर गर्म का स्थिर, ये अस्थिर वैसे स्थिर है, सथाई सतलोक घर का मरम न पावे, ये बारह पंथ हमी को धावे, यानी गरीबदास पंथ जो है बारमा पंथ हो गया, और ये पूर्ण परमात्मा को यथार्थ स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक का स्थान नहीं पाएंगे। अस्थिर गर्म का मर्म न पावे, ये बारह पंथ हम ही को धावे। ये क्या लिखा परमात्मा ने, बर वे पंथ हम ही चलावे, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं बर में यानी गरीबदास पंथ में हम ही चलावे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। अच्छा, धर्मदास को कह रहे हैं तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, यानी इन, क्योंकि अब क्या बात है समझने की वाणी है परमात्मा की। धर्मदास जी को कह रहे हैं कि जब तक मैं हम नहीं आए दोबारा, या अपना कोई दास भेजेंगे, तो तब तक तो केवल नीचे वाली जो भोली भाली जनता है, गरीब सी जनता है, जो दुखी है, उनको समझाने की चेष्टा कर, वो मान जाएंगे, या राज दरबार वाले लोग भी मान सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं। इसलिए कहा कि प्रथम तब लग तुम, जब तब तक कहते हैं बर में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक चलावें, तब तक तुम बोधो कोली, कोली माने जुलाहे और नीचबार आदि यानी छोटी जाति वालों को समझाओ, वो दुखी होते हैं, वो भगवान से डरने वाले होते हैं, वो भगवान को मान सकते हैं, उनका कल्याण हो सकता है, या राज दरबार के लोग भी समझदार बुद्धिमान होते हैं, वो भी आपकी बात को महत्व दे सकते हैं, बाकी जो कॉमन जनता है वो इन नकली संतों ने गुरुओं ने भ्रमित कर रखी है, उनको फिर आकर के दोबारा लेंगे अपनी शरण में, तब तक तू ये सार ज्ञान को अन्य को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, क्यों भोली जनता सार ज्ञान से संबंध कुछ रखती नहीं, उसको तो भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, और वो अपना जो कल्याण है थोड़ा वो दुख वो निवारण चाहिए, वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। राजदरबारी लोग होते हैं वो अपने स्वार्थवशी ज्यादा ग्रहण करते हैं, तो परमात्मा ने अपनी स्थिति को अभी तक बनाए रखने के लिए अपने कुछ शक्ति युक्त भक्त संत भेजते रहे, लेकिन यथार्थ ज्ञान जनता तक नहीं पहुंच पाया, और ना ही कबीर जी चाहते थे कि अभी ये बात खुले, क्योंकि उन्होंने इस समय के लिए सब गुप्त रखा हुआ था, और साथ में ये भी महिमा परमात्मा की आज तक चलती रही कि ये नकली बारह पंथ थे, इन इनमें एक एक जो शुरू में आए वो तो ठीक से व्यक्ति रहे, उसके बाद फिर ये नकली संत चलते रहे। तो कबीर साहब का नाम पृथ्वी से उठा नहीं, प्रभु अपनी समर्थता बनाए रहे ताकि अब उनको समझाया और समझा जा सके। अब क्या बता रहे हैं, धर्मदास जी को बता रहे हैं कबीर वाणी में, बर हे पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे, तब लग बोधो कुरी चमारा, कोली कोली कहते हैं जुलाहों को, फिर तुम बोधो राज दरबारा, कहते प्रथम चरण कलयुग निराना तब मघर मांडो मैदाना, ये प्रथम चरण धर्म राय से मांडो बाजी, तब दर बोधो पंडित का जी, बावन वीर कबीर कहाऊं, भव सागर से जीव मुक्ताऊं। अब यहां इसको समझिएगा, अब हमने आगे अब आपको दिखाते हैं, ये आगे फिर देखो, एक तो ये बात ध्यान रखिए कि प्रथम चरण कलयुग निराना तब मगहर मांडो में दाना, ये प्रथम चरण में परमात्मा बनारस में आए थे और मगहर में शरीर सह शरीर चले गए थे, ये प्रथम चरण था। आगे देखो, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द बाहर नहीं जाई, सार शब्द, मूल शब्द माने मुख्य ज्ञान, मुख्य नाम। आगे ले, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। अब मूल ज्ञान लिखा, ये तत्व ज्ञान भी अभी तक गुप्त, गोई माने गुप्त रखना और सार शब्द भी गुप्त रखना, मूल शब्द माने सार शब्द, मूल ज्ञान माने तत्व ज्ञान। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ओह मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये तत्व ज्ञान इन नकली संतों का हाथ लग गया तो हम पहचान नहीं बता पाएंगे नकली और असली की, इसलिए मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, ये बिचली पीढ़ी ध्यान रखो। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, लेकिन ये तत्व ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाएगी। ओहो, कहते हैं इस तत्व ज्ञान को तब तक प्रकट नहीं होने देना है जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब ये सारे पंथ मिट लिए, क्योंकि तत्व ज्ञान हमारे पास है, उन संतों के द्वारा दिया गया ज्ञान भी हमारे पास है जो बिल्कुल व्यर्थ और यूजलेस है, उनके द्वारा दी गई भक्ति मंत्र भी कबीर परमेश्वर की यथार्थ भक्ति मंत्र से नहीं मिलते हैं। अब ये सभी समाप्त हो जाएंगे। अब ये तो परमात्मा ने कहा मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब सार शब्द जो मंत्र जो भक्ति विधि का जो उपासना है उसके विषय में बताया है, वो ध्यान से सुनिए। ये देखिएगा जीव धर्म बोध पृष्ठ 1937 पर सार शब्द के विषय में कहा है, सत कबीर वचन, कबीर परमेश्वर ने कहा है सत कबीर वचन, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। वहां तो यहां देखिएगा, यहां तो कहा है मूल ज्ञान को, पवित्र धर्मदास मेरी लाख दोहाई, मूल शब्द बार ना जाए, ये सार शब्द संकेत है। फिर पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा तो करते रहो लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त रखो, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, तत्व ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यहां तो कहा है मूल ज्ञान के विषय में, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा। मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। यहां सार शब्द के विषय में बताया है जीव धर्म बोध, ये है कबीर वाणी और बोध सागर में 137 पृष्ठ पे, जो पहले आपको सुनाया 36-37 पे तत्व ज्ञान के विषय। अब सार शब्द के विषय में है, सन ये है पृष्ठ 1937 और जीव धर्म बोध। अब देखना सार शब्द के विषय में कहा है, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई, सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये सार शब्द के बारे में विशेष क्लियर किया है, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बार नहीं जाई, सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। युगन युगन तुम सेवा के नी, ता पीछे हम यहां पग दीनी, कोटिन जन्म भक्ति जब की ना, सार शब्द तब ही चीना। अंकुर जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई, के जो खास जीव होगा पहले का भक्ति युक्त होगा और अंकुरी होगा यानी हमारा भक्त होगा, वो सार शब्द का अधिकारी होगा। सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसा कठिन है पद निर्वाण। अब यहां बिचली पीढ़ी का निर्णय हमने लेना है कि बिचली पीढ़ी ये अब चल रही है, इसका स्पष्ट किया परमात्मा ने। अब देखिएगा कबीर वाणी पृष्ठ 137 पर क्या कहा परमात्मा ने, कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, कबीर गरीबदास के 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मेरी वाणी प्रगट होगी, शब्द हमारे की वह निर्णय ठानी। फिर उस गरीबदास जी के अनुयायी मेरे शब्द का निर्णय ठानेंगे, मेरी महिमा ज्ञान को विचार करेंगे, पर वो समझ नहीं सकेंगे इस तत्व ज्ञान को, इसलिए भक्तिहीन होकर के असंग जन्मों तक वो सतलोक नहीं जा सकते। ये देखो, बारहवें पंथ प्रगट हो बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी स्थिर घर का मरम न पावे सतलोक नहीं जा सकेंगे ये बारह पंथ हम ही को ध्यान ये कबीर कबीर तो करेंगे लेकिन वास्तविक ज्ञान उनके पास और भक्ति विधि नहीं होगी इसलिए वो असंख्य जन्म ओहो असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। फिर कहते बारहवें पंथ हम ही चलावे हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। अब क्या कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगहर मांडो मैदाना। प्रथम चरण में कहते हैं मैं बनारस में क्योंकि बनारस में तो थे ही और प्रथम चरण में कहते हैं मैं मगहर मांडो मैदाना यानी प्रथम चरण जो है स्पष्ट कर दिया है कि मगहर में जो परमात्मा सहसीर गए थे वो प्रथम पीढ़ी थी जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे वो प्रथम पीढ़ी हमारी चल रही थी अपने कलयुग में तो वो उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय जो भक्तात्माएं थी वो अशिक्षित थे और शिक्षा केवल एक विशेष वर्ग ब्राह्मण वर्ग के पास ही उपलब्ध थी उन्होंने भक्ति मार्ग को न समझा केवल स्वार्थ मुख्य मान करके उन्होंने इस भक्ति को बर्बाद किया। परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान समझाया कहने की चेष्टा की लेकिन उन स्वार्थी गुरुओं ने ऋषियों ने महर्षियों ने परमात्मा की महिमा को जन साधारण तक नहीं जाने दिया। ये तो थी प्रथम पीढ़ी और लास्ट की पीढ़ी जो तीसरी पीढ़ी बिचली इसलिए लिखा है कि ये क्लियर हो जाए। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी लास्ट की पीढ़ी जो कलियों की होगी वो कर्तगनी हो जाएंगे कति भगवान भजे नहीं और बहुत बुरा हाल हो जाएगा कलियों के लास्ट में सभी मांसाहारी हो जाएंगे कोई मर्यादा नहीं रहेगी मनुष्य को मनुष्य खाने लग जाएगा ऐसा जुल्म हो जाएगा। तो कहते वो पिछली पीढ़ी तो कर्तघनी हो जाएंगे और अब बीच वाली पीढ़ी जो अब चल रही है वर्तमान में और ये हजारों वर्ष चलेगी ये पार करने हैं। इन हजारों वर्षों में वो पुण्यात्मा परमात्मा पुनर्जन्म देगा उनको जो परमात्मा के कोटे में इस ब्रह्मांड के एक कोने में परमात्मा ने अपना एक विशेष स्थान राजदूत भवन की तरह स्थापित किया हुआ है वहां उन पुण्यात्माओं को रखा हुआ है। अब वो पुण्यात्मा जो पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होंगी वो तुम्हारे घरों में जन्म लेंगी तुम्हारे पुत्र या पुत्री रूप में वो इतने सुख उनके इतने पुण्य होंगे कि उनके काम भी बढ़िया चलेंगे सारे समाज से न्यारे उनके सुख होंगे और ये भक्ति करेंगे और बीड़ा पार करवा जाएंगे। इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आपके घरों में पुण्यात्मा आए पुण्यात्माओं अब आप परमात्मा के ऑपरेशन में हो। कुछ भक्त आत्मा कहते हैं क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं समाज के लोग हमारे को ज्यादा टॉन्ट कसते रहते हैं जैसे लड़की का शादी होगी लड़के लड़की की एक बालक खराब हो गया गर्भ में दूसरा भी खराब हो गया तीसरा भी हो गया और नाम ले रखा है तो पड़ोसी तो कहेंगे रिश्तेदार भी कहेंगे कि तुमने के नाम ले रखा था वंश नहीं चल रहा है। लेकिन यह बात आपने बहुत गहराई से सोचनी होगी परमात्मा ऐसी दुष्ट आत्मा को तुम्हारे घर जन्म नहीं लेने देंगे जो तुम्हें भक्ति बाधक हो और काल चाहेगा कि ऐसा दुष्ट पैदा कर दो बेटा या बेटी रूप में ना जीवे ना जीण दे तो उनके संस्कार भी आपके जन्म गर्भ में आ गया तो उसका जन्म माना जाता है उनको वहीं समाप्त करता रहेगा ये परमात्मा का ऑपरेशन है। लेकिन आपकी बुद्धि इतनी संकीर्ण होगी है कि हम चिंतित हो जाते हैं नाम भी त्यागने तैयार हो जाते हैं क्या रखा है वहां पर और फिर भगवान अपने कोटे से ऐसी निर्मल आत्मा देगा कि आपकी सेवा भी करेगा भक्ति भी करेगा और उसके साथ उसके पुण्य होंगे कि उसके ठाठम ठाठ रहेंगे। पर इस ज्ञान को समझने में बहुत ज्यादा समय आपको सत्संग में देना होगा तब यह बुद्धि सेट होगी और ऐसे प्रमाण है वर्तमान में दिखा दूं आपको हजारों की संख्या हमारे भक्तों ने नाम ले रखे उनका बेटा इतना दुष्ट पैदा हो गया जो जीवन जीण दे रहा तंग करे लड़ाई करे गाड़ दे भूंडा बोले कई तनों कहे कि एक रू बेटा रोज पीटे है। तो ऐसे को परमात्मा अब अगर तुम सच्चे दिलते और दृढ़ रहोगे तो ऐसी आत्मा परमात्मा इस काल के दूत को आपके घर में प्रवेश नहीं होने देगा। उसके लिए आपने ज्ञान को आधार बनाकर और दृढ़ रहना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा और सौ काल जखजोली पर द्वार छोड़ नहीं जा। तो अब क्या कह रहे हैं कि प्रथम चरण में तो मैं मघर में सशरीर जाऊंगा, फिर आएंगे। अब ये बिचली पिंडी शुरू होगी, क्यों? सब शिक्षित हो गए, पहले अशिक्षित थे। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की महिमा तत्वदर्शी संत बताते हैं, और उन उस तत्व ज्ञान में परमात्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा अपने मुख्य ज्ञान में, अपनी वाणी में जो अपनी ही महिमा आप ही बताई है, उसके अंदर ये सभी क्रियाएं भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, जो व्यर्थ है, उसका उस तत्व ज्ञान के अंदर विस्तृत वर्णन है। उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनसे फिर वो मार्गदर्शन प्राप्त कर। वही ज्ञान जो गरीबदास जी महाराज के माध्यम से परमात्मा ने अपनी वाणी को प्रकट करवाया है कि संवत 1774-75 तागड़ प्रेम प्रगट है सोई, तो उसमें लिखा कि मेरी वहां वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, लेकिन उसके अनुयायी गरीबदास पंथ के, बारहवें पंथ के अनुयायी भी मेरी महिमा से अपरिचित रहेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं सकेंगे। इसलिए नहीं समझ सकेंगे क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला है। गरीबदास जी तत्वदर्शी संत थे, बंदी छोड़ थे, उनको परमात्मा ने बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी थी, निर्देश दे दिया था कि सार नाम किसी को नहीं देना है और ये तत्व ज्ञान भी नहीं बताना है। हाँ, मेरी महिमा और आपकी, मेरी महिमा का गुणगान कर, मैं तेरे साथ हूं, शक्ति परमात्मा ने दी। गरीबदास जी ने बहुत चमत्कार दिखाए ताकि परमात्मा ये सिद्ध हो सके कि गरीबदास जी कबीर जी के उपासक थे और उन्होंने भी वो अनहोनी करके दिखाई जो जनसाधारण नहीं कर सकता, ईश्वरीय शक्ति युक्त थे। उसके कारण क्या हुआ कि परमात्मा की महिमा की वाणी अभी तक हमारे पास सुरक्षित रही, क्योंकि उनके अनुयायी इसको पढ़ते रहे, इसके पढ़ने से थोड़ा बहुत लाभ होता रहा ज्ञान यज्ञ का, बाकी उनके पास भक्ति नहीं है, तो अभी तक वो चलती आ रही थी, इसलिए हमें ये ज्ञान जो का तो सुरक्षित मिल गया। तो वो वाणी जो कबीर पर महिमा की वाणी है और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, वो आपको अब सुना जा रहा है। वो तत्व ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में कहा है कि वो परमात्मा की मुख वाणी में, उन्होंने तो वेद की वाणी में कहा नहीं, वेद की वाणी, वेद तापे वाणी है, वेद तो सारे ही श्लोक हैं, मंत्र हैं, वेद की वाणी क्यों थी? वेद के मंत्र हैं, वो परमात्मा की महिमा के ही हैं, वेद मंत्र हैं, वेद के नहीं, वेद मंत्र हैं वो। और कबीर परमात्मा ने की वाणी, परमेश्वर की वाणी, वो आपको सुनाई जा रही है। अब इसमें क्या बताया है, ग्रीवन्योलनाद सुभान गति वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है विसनी व्यापेश, अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मसाहाड, अंश दशा तो सादे हैं सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। इन अमृतवाणी का आपको अनुवाद सुनाते हैं। इस पांचवें वेद को आपके समक्ष पढ़कर सुनाया, अब इसका अनुवाद करते हैं इन मंत्रों का। न्योली नाद सुभान गति, न्योल होता है एक नेवला जिसे कहते हैं, नेवला एक जानवर है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा होता है, आपने गिलहरी तो आम देखी होगी, उसी तरह का होता है। और वो सर्प के साथ पंगा मोल ले लेता है। सर्प होता है लगभग 8 फुट 9 फुट 10 10 फुट का लंबा और बड़े शरीर युक्त, और वो नेवला होता है सारा 10 इंच का, बड़े चूहे जैसा। तो वो सर्प के साथ लड़ता है, बताओ उसकी क्या औकात है इतने बड़े जानवर के साथ वो छोटा सा जानवर लड़े। वो कैसे लड़ता है, वो क्या करता है कि एक जड़ी होती है, एक जड़ी होती है जंगल में, उस जड़ी की महक से सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं। वो नेवला सर्प जब पंगा लेता है उसको पता होता है कि यहां आसपास की झाड़ी में वो जड़ी है, तो उस झाड़ में जाकर के वो पहले घुसता है, फिर उस जड़ी की इस महक को अपने श्वासों के द्वारा अंदर ग्रहण करता है, फिर उसको रोक लेता है, रोक करके आके सर्प के पूछड़ पर पंजे मारता, सर्प घूम कैसे आता है, फिर वो श्वास छोड़ देता है उसके सामने। तो वो जो जड़ी सूंघ के वो आया था, जैसे बीड़ी पीने वाले बीड़ी पी के फिर धुमा रोक ले थोड़ी देर फिर छोड़ डाल, तो ऐसे वो सर्प जो है वो उस नेवला उस जड़ी को सूंघ के आता है और सर्प की तरफ उसने छोड़ देता है स्पीड। तो वो सर्प के जो श्वास ग्रहण करता है तो उसको चक्कर आने लग जाती है, फिर सर्प सामने रुक नहीं सकता, वो अपनी जान बचाकर भागने की चेष्टा करता है, नेवला उसकी बुंडी पर जाकर पीछे से उसके मुख पर बैठ जाता है और उसको ऐसे बार बार वह मैक छोड़ता रहता है और सर्प जो है निष्क्रिय हो जाता है, उसको सर्प को मार डालता है। अब नेवले की सर्प की तुलना में नेवले की क्या औकात है कि वो लड़के सामने आकर के उसे लड़ सके और उसको हरा सके या मार सके, नहीं। लेकिन वो उसने एक विधि अपना ली, वो जड़ी ढूंढ ली जिससे सांप जो सर्प जो है कंट्रोल होता है। तो परमात्मा कहते हैं जड़ी जान जगदीश है विस्नी व्यापै से नोल नोल नाद सुभान गति वो लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विस्नी व्यापै से। परमात्मा ने क्या संकेत दिया है आपको, जो हमने सतनाम और सारनाम दे रखा है, जिनको सतनाम प्राप्त है, कहते हैं ये वो नेवले वाली जड़ी है और काल जो है ये सर्प है, बहुत इसको समझ लो शेष नाग के तुल जानो, जिसके 1000 फुन हो, और ये श्वास का जो श्रवण सतनाम आपको दिया है ये वह जड़ी समझ लो, जड़ी जान जगदीश है, परमात्मा की शक्ति है उसके अंदर, इस मंत्र के अंदर, इस मंत्र का श्वास से श्रवण करते ही जो काल आपके ऊपर अटैक करता है वो निष्क्रिय हो जाएगा और काल सामने रुक नहीं सकता, वो भाग जाएगा, ना यमदूत रुक सकते ना ये भूत रुक सकते। तो यहां क्या बताते हैं, नौल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है व्यसनी व्यापै शेष। अंश गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाता है वो खाता मासा हाड़े। एक हंस पक्षी होता है, हंस पक्षी के अंदर एक कुदरती गुण है इस प्रभु दत्त के, वो सरोवर पर जाएगा झील पर जाएगा तो वहां पर वो कोई मेंढक मच्छी नहीं खाता, वो उन घोग्यों को नहीं खाता जो कौवा और बुगले खाते हैं, वो तो मोती मिल जाए तो खाएगा नहीं तो मर जाएगा, निराहार रह जाएगा। हंस में एक और गुण होता है, हंस के सामने दूध में जल डाल कर रख दो, एक गिलास दूध एक गिलास जल उसको मिक्स कर दो और फिर उसको रख दो, तो वो क्या करेगा हंस, उसमें ऐसा गुण दिया प्रभु ने, चोंच डालते ही वो दूध अलग हो जाएगा, वो दूध दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को वहीं छोड़ देगा, ऐसा कोई ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है कि दूध को ज्यों का त्यों सुरक्षित रख दे और जल को उससे अलग कर दे। उबाल के वो तो अलग बात है, वाष्प बना के पानी जला के दूध रख लिया, लेकिन परमात्मा ने हंस में ऐसा गुण दिया वो दूध और पानी को छान देता है। दूध पानी को छानना अर्थात अच्छे और बुरे को देखकर सार सार को ग्रहण कर लेना, ये हंस के गुण होते हैं। हंस अब भक्तों को हंस कहा है, जो पुण्य आत्मा है, जो परमात्मा की चरणों में आ गए हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको ये हंस कहा जाता है। आपने बुरे और अच्छे को पहचान लिया है, बुराई को अलग कर दिया है और अच्छाई को ग्रहण कर लिया, आप हंस हो गए। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आपने त्याग दिया, चोरी ठगी जारी आप नहीं करोगे, आपने दूध और पानी को छान लिया, आपने निर्णय ले लिया कि बुराई करना बहुत गलत है, इसलिए हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा और पुण्य और भक्ति करना ही एक शुभ कार्य है, तो उसको आप करने लगे, आप हंस हो गए। तो यहां क्या बताते हैं, हंस गमन करते नहीं मानसरोवर छाड़े, कव्वे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। अपने आत्माओं आपने वेद पढ़े, आपको वेद भी पढ़ कर सुनाऊंगा, उसमें बहुत सिंपल ज्ञान है। वेदों का अनुवाद क्योंकि तत्व ज्ञान समझवाने के बाद होता है, दास ने कुछ एक का अनुवाद किया है तो वो बहुत आसानी से है, बहुत सिंपल ज्ञान है, इतना गूढ़ रहस्य उसमें नहीं है, लेकिन ये तत्व ज्ञान का समझना ये बालकों का खेल नहीं है। एक लाइन को सुलझाने के लिए कितनी भूमिका बनानी पड़ रही है और कहां कहां तक आपको समझाना पड़ रहा है, एक पंक्ति एक मंत्र जो सप्तम वेद के एक मंत्र को आपको अनुवाद करने के लिए अब कितने उदाहरण देने पड़ रहे हैं। हंस गमन करते नहीं मानसरोवर छाड़े, कव्वे उड़ उड़ जाते हैं ये खावे मांसाहारे। कितनी प्यारी व्याख्या दी है, कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, उन्होंने फिर यहां लिपिबद्ध किया है। जैसे आपने आपको बताया कि हंस मांस नहीं खाते, केवल अपना उनका हर मोती होता मोती ही खाता है, और कव्य जो होते हैं और कहते हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कव्य उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। कहते हैं हंस दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ताहल मोती चोगे ये चढ़े नवेला रंग, मुक्ताहल बाणी चोगे ये चढ़े नवेला रंग। अब ये सत्संग तो सरोवर है, सत्संग इस पृथ्वी पर सत्संग ही सतलोक आश्रम में होता है, बाकी कहीं सत्संग नहीं है। उन्होंने बेसिक बोर्ड सत्संग का लगा रखा है, वहां सत्संग नहीं है, वहां कुसंग है। तो यहां कहते हैं सत्संग तो सरोवर तो सत्संग है, हंस दशा तो संत है, आप तो हंस हो जो इस मार्ग पर लग चुके हो, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चोगे ये चढ़े नवेला रंग। हंस गवन करते नहीं, हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कव्वे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। पुण्यात्माओं आप पहली क्लास के बच्चे हो, इसलिए दास ने रह रहकर बार बार आ का आम एक ही इमली फेर पढ़ो, इसलिए बार बार समझाकर आपके हृदय में ऐसा जचा दूंगा कि आप अपनी संतान को भी परमात्मा के चरणों में समर्पण करोगे और वो भी फिर इन्हीं इसी ज्ञान को स्वयं भी समझेंगे और जनसाधारण तक इसका डंडोरा पीटेंगे। आपको ही इतना दृढ़ कर दूंगा ताकि कोई शंका ही ना रहे, जब शंका रह जाती है तो आप विचलित हो जाओगे, आप दूसरे को नहीं समझा सकते। तो क्या बता रहे हैं कि हंस गमन करते नहीं, हंस उस जहां मोती हो हंस उस सरोवर को छोड़कर नहीं जा सकते, और कौवे वहां रुक नहीं सकते क्योंकि वहां मोती है और वो एक सरोवर छोड़ के दूसरे पर जाएंगे जहां ज्यादा मच्छी होंगी, जहां ज्यादा कीड़े मकोड़े होंगे, उनको जा जाकर मांस उनके हाड़ों पर का मांस खाते हैं। लेकिन हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़। अब क्या बताया है कि हंस दशा तो साध है, साधु माने जो सीधा चाल है भक्त, ये जो साधना कर रहे हो आप साधु है, साध है, जिन बुराई छोड़ दी, साध संगत कहते हैं ना, साध संगत, तो आप साध हो। कहते हैं साध हंस दशा तो साध है, वो हंस तो समझो ये भक्त है, और सरोवर है सत्संग, ये सत्संग जो है ये सरोवर है जहां पर मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंगे। ये कहते हैं इस अमृत रूपी बाणी रूपी मोती ये चुग रहे हैं, खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं कानों के माध्यम से, इनका चढ़े नवेला रंग, इनका ऐसा रंग भर जाएगा कि ये काल के हाथों नहीं आएंगे। हंस नहीं जाया करते ऐसे निर्मल सत्संग को छोड़कर, लेकिन वो कौवा रूपी जीव है उन पर डटा नहीं जा, वो तो उन्होंने तो बकवाद मन लगता है, कहीं शराब पीवेंगे, कि तो रग नहीं सुनेंगे, कि तो चोरी करेंगे, कि तो कमीशन लेंगे, यानी वो नहीं रुक सकते यहां पर जो कव्य रूपी है। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगई चढ़े नवेला रंग। तो कौवा रूपी जो हंस भक्त कौवा रूपी जीव है वो इस सत्संग रूपी जहां मोती होते हैं, अमृत परमात्मा की वाणी रूपी मोती है, उनमें ये कौवे नहीं डट सकते, वहां तो हंस ही रहेंगे। उनका आहार ही ये अमृत वाणी है, ये मोती है, वाणी रूपी मोती उनका आहार है। दर्श परस नहीं अंतरा रूमी बस्तर बीच, पारस लोहा एक डग पलटे नहीं अभीच। अब क्या बताते परमात्मा कि जिनके हृदय में कपट है, जिनके हृदय में परमात्मा की जगह नहीं बनी है, वो मोक्ष नहीं हो सकते, वो मुक्त नहीं हो सकते, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं कि एक पत्थर होता है जिसको पारस कहते हैं, उस पारस के पत्थर, उस पत्थर पारस पत्थर में एक ऐसा गुण होता है कि यदि उसको लोहे के साथ टच कर दिया जाए, वो उस पूरे लोहे के जो एक मास पूरा होगा, उस पूरे लोहे के टुकड़े को सोना बना देता है। और कहते हैं रूमी वस्त्र अंतरा, यानी एक बहुत ही पतला सी साड़ी हो, रूमी वस्त्र, जैसे बहन दुपट्टा लेते हैं या मलमल समझो, मलमल से भी और पतला कपड़ा हो, और उस पारस और पत्थर के बीच में यदि इतना भी अंतर रह गया, वो बिल्कुल साथ रखे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतना भी अंतर रह गया तो भी वो लोहा सोना नहीं बन पाओगा, और साथ ही रखे हैं। तो कहने का भाव यह है कि सत्संग में भी आवे और उनके अंदर जगह नहीं, परमात्मा की कसक नहीं बनी, उनका मोक्ष नहीं होगा। अब गरीबदास साहब क्या समझा रहे हैं, कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मकंते, आद अंत की कहते हूं पटतर कोई न संते। कस्तूरी नाम कबीर है, कस्तूरी में एक बहुत सुंदर महक आती है, बहुत ही सुखदाई महक आती है, वो अपने आप निकलती रहती है उसके अंदर से। कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है और बिन छेड़े मकंत, आद अंत की कहत हूं पटतर कोई न संत, यानी उस परमेश्वर के बराबर कबीर जी की तुलना में कोई भी संत नहीं है, उनके पटतर उसके इक्विवेलेंट कोई भी संत नहीं है। संत शरोमणि सब संतन सरताज हैं, सतगुरु अदल कबीर। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, जिन आकार अजोख पद त्रिकुटी में दीखंत। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हो सुरत सरोवर सीर। दो नैनो बिच कमल है, उज्जवल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत है, जिन्होंने पाया वो राम। अब क्या बताते हैं कि त्रिकुटी के अंदर दो नैनों के बीच कमल है, जो त्रिकुटी का जो दो दल का कमल है, जिसकी दो पंखड़ियां हैं, वह उज्जवल हिरंबर धाम, वो त्रिकुटी स्थान बहुत ही सुंदर है और वहां पर परमात्मा आपको दर्शन देगा। उस परमेश्वर को शेष सेंस पुनरटत है, जिन्होंने पाया वो राम, वह राम वह तत्ब्रह्म उनको भी नहीं मिला। ग्रीव सेंस 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। 88,000 ऋषि भी उस परमात्मा को नहीं प्राप्त, उस विधि को नहीं प्राप्त कर सके, ना ही ये तत्व ज्ञान उन्हें मिला, ना ये 33 करोड़ देवता प्राप्त कर सके। उस तत्व ज्ञान के भाव से यथार्थ भक्ति ना करके ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि ये 84 लाख योनियों में जाएंगे, कोई बकरा कोई बोक बनेगा, अर्थात ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। पुण्यात्माओं, अब इस तत्व जो है सवसम वेद, अर्थात इस परमेश्वर की अमृतवाणी, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए एक बहुत ही धैर्य की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब यहां ये कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि भी उस परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं, जिस कारण से वह 84 लाख योनियों में रहेंगे और जाल काल के जाल में रहेंगे। तो जनसाधारण जो पहली बार सुनेगा तो यह सोचेगा कि संत तो बावड़ा है, मूर्ख है, पता नहीं एंड बैंड बोला है या कोई बात हुई, इतने महापुरुष जिनकी महिमा गाई जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हम एक बहुत ही सत्कार करते हैं, आदरणीय मानते हैं, इनको भी कहते हैं भगवान नहीं मिला। अरे भगवान मिलेगा भक्ति करने से, पर वो भी एक जीव संज्ञा में, ठीक है वो पुण्य आत्मा थे काल के इस लोक में, वो हमारे से अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए उन काल ने उनको अपना अपनी मुख्य पोस्ट पर नियुक्त कर रखा है। जब उनकी वो पुण्य समाप्त हो जाएंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी 84 लाख योनियों में आएंगे। इसका प्रमाण आपको भी देता हूं, पहले हम इसको और पढ़ते हैं। सैस 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 24 अवतार जो आए हैं, ये 2400 पर भी जो है ना प्रतिबंध है, वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। इन 33 करोड़ देवताओं पर भी, इन 24 अवतारों पर भी और 33 करोड़ देवताओं पर भी काल के ही लोक में रह करके कोई बकरा बनेगा कोई बोक बनेगा। 88,500 में 2500 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं, के बे मुकाम के बे कूचे। ये भी चला चलिए के अंदर है, कभी यहां मर गए फिर स्वर्ग में, स्वर्ग में उसे मर गए नरक में, नरक से चले फिर 84 लाख योनियों में। ना सतगुरु जननी ही जन्या, गरीबदास जी कबीर परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं, ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है, जाना तीनों ताप। वो तो पिंड और ब्रह्मंड के पार है, कर्णनो दीदार महल में प्यारा है। गरीब कबीर साहिब जी की अमृतवाणी सौसम वेद में लिखा है कि पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। यहां गरीबदास जी भी वही उसके समर्थन कर रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माप माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ब्रह्मंड से बाहर है, ना वा तीनों ताप।